नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र तिवारी
और मैं हूं अंजलि जोशी। और दोस्तों, जब चले शहर की ओर के 17वें एपिसोड में हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं।
अच्छा अंजलि, एक बात बताओ।
हाँ पूछो।
तुम्हें नहीं लगता कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने के लिए जगह ढूंढना एक बड़ी समस्या है?
हाँ नरेन, शहरों में रहने की जगह कम है और लोग ज्यादा, लेकिन अगर समस्या है तो इसका कोई ना कोई समाधान भी होगा।
भाई समाधान भी है, और दोस्तों आज के एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं।
लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर फोर्ट फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियोसिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने प्रवासी भाइयों को उनके काम आने वाली सभी जानकारियां दें। लेकिन अगर कार्यक्रम में दी जाने वाली जानकारी के संबंध में आपको कुछ और पूछना है तो आप हमें SMS कर सकते हैं।
हमारा नंबर तो याद है ना आपको, और अगर याद नहीं भी है तो उसे अभी नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9197176782।
और अब हम सुनते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
दोस्तों पिछले अंक में आपने सुना, उमेश पासपोर्ट बनाने वाले दलाल के पास पहुंच जाता है और अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन दलाल के गुंडे उमेश की बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। इधर चंदर नौकरी की तलाश से निराश होकर घर लौटता है और वो कल्पना को दिन भर में होने वाली परेशानियों का हाल कह सुनाता है। कल्पना चंदर को तसल्ली देती है। मुंबई में कविता राजेश को बताती है कि वो ग्रेजुएशन करना चाहती है और राजेश उसे प्रोफेशनल कोर्स करने की सलाह देता है। अब आगे।
गुड़िया गुड़िया, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, नाश्ता तैयार है, जल्दी कर।
पता नहीं लड़की स्कूल के समय कहाँ चली जाती है।
बौजी।
हो उमेश, तो उठ गए तुम? कल का नशा उतरा है या अभी कुछ कहना बाकी है?
बौजी मुझे मालूम है, कल रात मेरी वजह से काफ़ी हंगामा हो गया था। मैंने बहुत कुछ ऐसा भी बोला जो सही नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बौजी मैं माफ़ी चाहता हूँ।
आगे से अगर पीना वीना है तो इस घर में मत आना, मुझे ये सब नाटक बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ध्यान रखना।
जी बौजी।
आप कुछ नाश्ता करोगे?
जी नहीं, रहने दीजिए, मुझे अब गाजियाबाद जाना है।
तो चंदर भी तुम्हारे साथ जा रहा है?
नहीं वो मेरे साथ नहीं जा रहा, मैं किसी और काम से जा रहा हूँ, वहाँ उसका कोई काम नहीं है।
तुम्हें पता है ना आज या कल मेरे किराएदार लौट आएंगे?
हाँ याद है, मैं गाजियाबाद में ही ठहरूंगा और चंदर भी कहीं ना कहीं अपने रहने का इंतजाम कर ही लेगा। वैसे भी यहाँ गाँव के काफ़ी सारे लड़के रहते हैं, एक तो वही है सुंदर जिसका पार्सल लेकर चंदर आया था। अच्छा भौजी मुझे लगता है कि अब मुझे निकलना चाहिए।
ठीक है।
बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी, कहो कहाँ से?
अरे गुड़िया क्या बात है, आज स्कूल के लिए देर नहीं हो रही तुम्हें?
हाँ बस जाई तो रही हूँ अंकल।
गुड्डू गुड्डू।
ओह लगते मम्मी फिर डांटेंगे।
गुड्डू तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्कूल के लिए देर हो रही है, जाओ पहले जाके नाश्ता करो।
हाँ मम्मी बस अभी खा रही हूँ।
अरे चंदर रुको, तुमसे कुछ बात करनी है।
जी बोलिए।
तुमने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है ना?
मैं कहाँ जाऊँगा, जहाँ उमेश जाएगा उसी के साथ मैं भी चला जाऊँगा। वैसे ये उमेश सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो मैं उससे इस बारे में बात कर लेता।
लेकिन वो तो चला गया।
चला गया?
अभी बस थोड़ी देर पहले गाजियाबाद के लिए निकल गया, कह रहा था कुछ काम था और वो वहीं रहेगा।
वहीं रहेगा? और मैं?
मैंने भी उसे यही पूछा था तो उसने कहा कि तुम किसी सुंदर के साथ रहोगे।
लेकिन ऐसे कैसे जा सकता है वो मुझे यूं बिना बताए? उसने तो मुझसे वादा किया था कि मेरी नौकरी लगवाएगा, मेरे रहने का इंतजाम करेगा, फिर ऐसे कैसे?
चंदर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, लेकिन क्या है ना, शाम तक मेरे किराएदार वापस आ जाएंगे, तब तक तो तुम्हें कमरा खाली करना ही पड़ेगा ना। अच्छा चंदर, ये जो तुम्हारा दोस्त है सुंदर, तुम उसके यहाँ तो रह सकते हो ना?
दरअसल कल्पना जी, जब मैं उसके घर पार्सल देने गया था तो मैंने वहाँ देखा कि पहले से ही 4 लड़के रह रहे हैं। मुझे नहीं लगता उसके यहाँ मेरे रहने का इंतज़ाम हो सकेगा। खैर मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है, मैं उससे बात कर लूँगा, हो सकता है कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाए।
ठीक है चंदर, वैसे कमरा किराए पर नहीं होता ना तो तुम यहाँ पर ज़रूर कुछ दिन रह सकते थे।
मैं शाम होने से पहले पहले आपका घर छोड़ दूँगा।
बुरा मत मानना चंदर, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ।
कोई बात नहीं कल्पना जी, आपने मुझे यहाँ रहने दिया यही बहुत है मेरे लिए।
अरे सुषमा, यहाँ इस वक्त? सुषमा!
नमस्ते बाजी।
यहाँ? तू इस वक्त जंगल में क्या कर रही है? आज स्कूल नहीं है क्या?
क्या बताऊं बाजी, माँ ने घास काटने के लिए भेज दिया, स्कूल से छुट्टी करवा दी। आज घर में काम है और माँ बीमार है।
ओ अच्छा। अच्छा सुन, मेरा कोई फोन आया था।
चंदर बाजी का?
हाँ।
नहीं, मुझे तो नहीं लगता।
कोई बात नहीं। अच्छा तू बता, अब दसवीं के बाद क्या इरादा है तेरा?
बौजी, दसवीं के बाद बारहवीं तो जरूर करूंगी, और हो सकता है उसके बाद करस्पोंडेंस से कोई कोर्स, फिर उसके बाद पता नहीं, इतना सोचा नहीं है।
ये कौन सा कोर्स होता है?
अरे बौजी, मेरी एक सहेली बता रही थी कि ये जो इग्नू है ना।
हाँ? इग्नू? ये इग्नू क्या है?
ये एक विश्वविद्यालय है जहाँ से हम घर बैठे पत्राचार के माध्यम से कोई भी डिग्री कोर्स कर सकते हैं।
हाँ? तो मुझे बताना ये विश्वविद्यालय कहाँ है और कितने पैसे लगते हैं इसमें? तेरे पास दाखिला लेने की कोई जानकारी है?
नहीं बौजी, अभी कहाँ, मैं तो बारहवीं के बाद दूंगी ना, अभी तो 2 साल और हैं।
हाँ, ओहो।
अरे आप चंदर भैजी को बोलिए ना, वो तो दिल्ली में ही है, वहाँ से तो इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी।
हाँ, जब वो अगली बार फोन करेंगे ना, तब बात करूंगी उनसे इसके बारे में।
हेलो।
हेलो सुंदर। अरे भाई, चंदर बोल रहा हूँ।
चंदर?
अरे तुम्हारा सामान लाया था गांव से, इतनी जल्दी भूल गए?
हाँ हाँ चंदर, अरे नहीं भूला नहीं हूँ यार, बता यार कैसे फोन किया।
सुंदर, क्या तेरे यहाँ मेरे रहने का इंतजाम हो सकता है?
रहने का इंतजाम? यार तूने तो देखा ही था, मेरे साथ पहले ही 4 लड़के और रह रहे हैं, और कमरा भी छोटा सा ही है।
नहीं नहीं यार, मैं बस कह रहा था कि अगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए, मेरा मतलब जब तक कहीं मेरी नौकरी का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक।
चंदर मेरे यहाँ तो मुश्किल है यार। हाँ लेकिन मेरा दोस्त है गोविंद, वो बदरपुर में रहता है, शायद अकेला भी रहता है, तू उसके पास चला जा, वो तेरी जरूर कोई ना कोई मदद करेगा।
यार मगर मैं गोविंद, मैं तो उसे जानता भी नहीं।
अरे अपने गढ़वाल का ही है, और वैसे भी तू उससे मिले तो मेरा नाम ले देना, वो तेरी जरूर मदद करेगा। उसका नंबर लिख ले।
हाँ बता।
एक मिनट, मेरी डायरी में है। गोविंद गोविंद, हाँ चल लिख, 9283400804।
हाँ ठीक है, मैं उसे कॉल कर दूंगा। सुंदर, मेरे लिए नौकरी की बात की तूने?
यार चंदर, अभी तो कोई बात बनी नहीं है, जैसे ही कोई बात बनेगी मैं तुझे फोन कर दूंगा। ये तेरा ही नंबर है ना?
नहीं, ये तो जहाँ मैं रह रहा हूँ उनका फोन है, मैं तुझे कल फिर से कॉल कर लूंगा।
कल नहीं, एक हफ्ते बाद कर लेना। अच्छा चल अब मैं फोन रखता हूँ, अगर मेरे मालिक ने मुझे फोन पर बात करते देख लिया तो गुस्सा करेगा।
ठीक है, धन्यवाद। हे भगवान, रहने की जगह ढूंढने में ही इतना वक्त लगेगा तो नौकरी कब ढूंढूंगा। चलो इस गोविंद को अभी ही फोन करता हूँ।
मेडिकल सफदरजंग आर के पुरम धौला कुआ पालम द्वार का, मेडिकल सफदरजंग आर के पुरम धौला कुआ पालम द्वार का। अरे भाई जरा ओहो थोड़ा सा आगे तो बढ़ जाए यार, यहीं पर खड़ा रहेगा क्या? आंटी, ओ आंटी थोड़ा आगे बढ़ जाइयो, आंटी थोड़ा आगे बढ़ जा आंटी।
ओ भाई साहब, थोड़ा जागे हो जाओ भाई साहब, आगे बढ़ो।
अरे भाई कहाँ बढ़े, देख नहीं रहे हैं कितनी भीड़ है?
ओ यार भीड़ है तो मेरे ऊपर चढ़ेगा, कमाल है।
अरे तो हम आपके ऊपर कहाँ चढ़ रहे हैं, हम तो इधर साइड में खड़े हैं।
यार मुझे अपना सामान तो हटा, मेरे मुंह के आग लगा दिया यार।
अरे तो क्या हम अपना सामान कंधे पर भी ना रखे अब?
पता नहीं कहाँ से चले आते हैं दिल्ली में यार।
क्या बोल रहे हैं आप?
मैं की बोलिया है? की बोलिया मैं?
झगड़ा बाद में करियो भाई, पहले टिकट लाओ।
यार पहले इसको थोड़ा आगे बढ़ा यार।
ए भाई चल थोड़ा आगे चल, अभी बहुत जगह खाली है।
खाली है पर इसमें तो जगह ही नहीं है।
ए ये दिल्ली है दिल्ली, अभी इसमें इतनी सवारी और आ जाएगी। चलो जल्दी बोलो यार कहाँ जाना है।
जी बद्रू, बंदरू जगह है ना वहाँ।
अरे हाँ है, ला 10 रुपए ला, ला ये, हाँ ये ला, हाँ, ले टिकट। हाँ भैया तुम्हारा हो गया। असदार जी ओहो, अरे खुले तो दे दो यार।
यार खुले नहीं है, 50 नोट है यार।
ओहो लाओ ये लो टिकट।
ठीक है,
पता नहीं ये बॉर्डर कब आएगा।
ओए तेरे को जाना किधर है यार?
जी बॉर्डर
द्वारका की तरफ।
जी नहीं, हम तो वो बंदर बॉर्डर की तरफ जाना है।
ओए बंदर बॉर्डर नहीं है यार, ओए बद्रपुर बॉर्डर है यार। ओ फिर तू तो गलत बस में बैठ गया, ये तो द्वारका जा रही है।
ये बस नहीं जाएगी क्या?
ओए मेरे यार, तू तो बहुत दूर आ गया है।
क्या? अरे भाई बस रोको, अरे बस रोको।
अरे क्या हो गया भाई?
अरे भैया तुमसे पूछ कर ही तो बैठे थे बॉर्डर जाएगी या नहीं, हम गलत बस में चढ़ गए हैं। बस रुकवाइए जल्दी।
अरे तो जब आवाज लगाकर बिठा रहे थे तब नहीं सुना था क्या? अरे रुक जाए यार, चालान कटवाएगा क्या? ओहो उस्ताद, अरे जरा उतार दियो उस्ताद, चल उतर, अरे उतर जल्दी।
अरे भाई साहब जरा साइड हटिएगा, अरे थोड़ा सा बहन जी। हाँ अरे यार ये बैग कहाँ अटक गया। हाँ
चलिए उस्ताद बढ़िया, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। बढ़िया उस्ताद।
हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ से बदरपुर कौन सी बस जाएगी, किससे पूछूं? भाई साहब ये कौन सी जगह है?
ये द्वारका है।
द्वारका है, फिर तो शायद मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ। भाई साहब आप ये बता पाएंगे कि यहाँ से बदरपुर कौन सी बस जाएगी?
बदरपुर मुझे तो नहीं पता, हाँ लेकिन सामने एक ढाबा है, वहाँ जाकर पता कर सकते हो, शायद वहाँ कुछ पता चल जाए।
जी धन्यवाद।
पता है अंजलि, जब मैं पहली बार दिल्ली आया था ना, तो मुझे पूरे 3 महीने लग गए थे रहने के लिए जगह ढूंढने में।
अच्छा?
उस समय मेरे पास पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं थे, और दिल्ली जैसे शहर में महंगाई का हाल तो तुम जानती ही हो।
हाँ वो तो है
यार, पूरे 3 महीने में दर दर भटकता रहा। उन दिनों को याद करके मैं अब भी यही सोचता हूँ कि भगवान करे दोबारा कभी घर ढूंढने की नौबत ना आए।
तो क्यों ना नरेन, हम बात करें अपने प्रवासी भाइयों से और उनसे जानें कि उन्हें दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने के लिए घर ढूंढने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा।
हमें बहुत सामना करना पड़ा, रहने की व्यवस्था नहीं थी, किराए में मकान नहीं मिलते थे, किसी के पूछने पर भी कोई सही हालत में जवाब नहीं दे पाते थे कि हाँ भाई तुम्हें मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहाँ पर हमारे कोई अरदास नहीं थी जो हमें कोई सहायता कर सके, इसलिए हम किसी के सहारे से रहते थे, किसी को हाथ जोड़ करके मना मनो करके बात करते थे ताकि कोई हमें ये कह दे कि हाँ भाई तुम्हारे लिए मकान की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी या है कि नहीं है। हम पे बिलीव नहीं करते थे, हम नए आदमी गांव से आए हुए थे, इसलिए हम पर वो लोग विश्वास नहीं करते थे।
सबसे पहले जब मैं दिल्ली में आया तो मुझे अपने परिवार से बिछड़ने का एहसास हुआ। जब मैं अलग रहने लगा तो सबसे पहले मैं शालीमार बाग गाँव में रहता था, उसके बाद मुझे एक पनवाड़ी मिला तो उसने मुझे एक जगह कमरा खाली बताया और मैं वहाँ रहने लगा तो उसमें मुझे काफ़ी परेशानियाँ हुई क्योंकि उसमें पानी लाइट इत्यादि की दिक्कतें काफ़ी थी।
जब हम शुरू शुरू में दिल्ली में आए थे तो हमें इस बात की परेशानी हुई कि किराए के मकान मिलते नहीं हैं, और किससे कहा भी है तो बड़ी मुश्किल से समस्या हल करनी पड़ी, एक दूसरे का सहारा लेना पड़ा। तब जाके हमें सहायता से किसी ने एक छोटी मोटी क्वार्टर दिलवा दिया, वो भी किराए में, वो भी किसी की जमानत पर। ऐसे दिल्ली में कोई चीज़ मिलती नहीं है, नामुमकिन काम है कि किसी मिल सके, ये काम मुश्किल बात है।
और अब हम आपकी बात करवाते हैं दिल्ली में रहने वाले अपने एक ऐसे प्रवासी भाई से जिनका दिल्ली जैसे बड़े शहर में आज अपना खुद का एक आशियाना है।
लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफर इतना भी आसान नहीं रहा, इस सफर के दौरान उन्होंने क्या क्या परेशानियाँ झेली, आइए सुनते हैं विश्वास से भरी इस कहानी में।
नमस्कार, मेरा नाम भगवान दास है, मैं ग्राम हमीरपुर जिला एटा उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं अपने गांव से दिल्ली लगभग 10 साल पहले आया था, फिर मुझे कोई ऐसी जगह तलाश नहीं थी जहाँ पर मैं रह सकूँ, लेकिन मेरा कोई जानने वाला नहीं था। फिर मैंने काफ़ी खाली जगह बनी पड़ी हुई थी रोड के सहारे से, तो मैं वहाँ पर कागज़ वगैरह बिछा के वहाँ पर लेट गया। इसी तरह से ये सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा। बड़ी कठिनाई से मैंने एक नौकरी तो ढूंढ ली थी, लेकिन रहने की समस्या मेरे लिए फिर से बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। फिर एक दिन मैंने देखा कि एक लड़का उसी कंपनी में धागा काटने का काम करता है, तो उससे मैंने पूछा कि मुझे यहाँ पर कोई कमरा किराए पर नहीं दे रहा, ना ही कोई रखता है, तुम क्या मेरी कुछ मदद कर सकते हो? तो उसने बोला कि ठीक है, आज तो तुम मेरे साथ चलो, बाकी मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ दो लोगों को, तो उनसे मैं बात करूँगा। शुरुआत में तो वो लोग राज़ी नहीं हुए, उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं जताया। उन्होंने कहा कि ये बिना पैसे दिए चला गया तो कौन जिम्मेदार होगा। उसने काफ़ी समझाया उन लोगों को। गारंटी के तौर पर उन्होंने मुझसे कुछ पैसे उसी समय मांगे। उन्होंने कहा कि पहले पैसे दो एक महीने के, उसके बाद मैं तुम्हें किराए पर कमरा दूंगा। तो मैंने उनसे 200 रुपये में मानने के लिए कहा, जिससे वो राज़ी नहीं हुए। फिर 50 रुपये मेरे दोस्त ने मुझे करके दिए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 250 रुपये में माने। इस तरह से मुझे कमरा मिला। लेकिन मेरे लिए समस्याएं बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कंपनी में ओवर टाइम लगता था। ज़्यादा काम होने की वजह से कभी कभी मुझे 10-12 बजे तक काम करना पड़ता था। फिर जब शाम को मैं वापस आता, रात को वापस आता, गेट खटखटाने पर मुझे काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता। वो लोग काफ़ी देर तक मुझे इंतज़ार कराने के बाद गेट खोलते। कभी कई बार वो गलत भाषा का प्रयोग करते थे, गालियाँ वगैरह भी देते थे। मैं काफ़ी दुखी हो गया था ये सारी चीज़ें सुन सुनकर।
अच्छा नरेन, एक बात पूछूं?
हाँ पूछो।
दिल्ली और मुंबई में रहने के लिए मकान मालिकों या फिर ब्रोकर से बात कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स हैं तुम्हारे पास?
अंजलि मैडम, शायद आप कुछ भूल रही हैं।
वो क्या?
भाई ऐसे टिप्स मेरे पास नहीं बल्कि भैजी के पास होते हैं, और उनसे अच्छे टिप्स कोई दे ही नहीं सकता।
हाँ वो तो है, तो ये बात अब भैजी से ही पूछते हैं।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल। बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार नरेन। नमस्कार अंजलि।
नमस्कार भैजी।
कैसे हो आप दोनों?
भैजी हम बिल्कुल ठीक हैं।
अच्छा भैजी, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे प्रवासी भाई शहर में आने के बाद अपने रहने के इंतजाम के लिए मकान मालिकों से कैसे बात करें।
नरेन, मकान मालिक से बात करने से पहले आपको ये पता लगाना चाहिए कि मकान खाली है कहाँ। इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? वहाँ के स्थानीय लोगों से, जैसे कि वहाँ के दुकानदार से, चाय वाले से, दूध वाले से, आदि आदि।
अच्छा, अब मान लीजिए भैजी के खाली मकान की जानकारी मिल गई, अब इसके बाद क्या करें?
तो इसके बाद आप जाएं मकान मालिक के पास। लेकिन हाँ, इससे पहले उस इलाके में किराए की दर के बारे में जरूर पता कर लें, ताकि आप सही ढंग से मोल भाव कर सकें। और हाँ, मकान मालिक से बातचीत करते समय ये जरूर स्पष्ट कर लें कि मकान के किराए में बिजली और पानी का बिल शामिल है कि नहीं। दिल्ली में और मुंबई में तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का चलन है, और मुंबई में ये राशि काफी ज्यादा हो सकती है। ये डिपॉजिट 20,000 से 50,000 के बीच में या उससे ऊपर भी हो सकता है। और सबसे जरूरी बात कि पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें, जैसे कि किसी को अपने साथ जरूर रखें बतौर गवाह, और हाँ कुछ ना कुछ लिखित में कार्रवाई जरूर कर लें।
बिल्कुल सही कहा भैजी आपने। तो दोस्तों, उम्मीद है कि भैजी की ये बातें सुनने के बाद आप मकान किराए पर लेने में आने वाली दिक्कतों से आसानी से पार पा सकेंगे। भैजी, आपने हमारे श्रोताओं को जो सलाह दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब वक्त है काम की बात का, और हमें पता है कि आप हमारा ये सेगमेंट बड़े ध्यान से सुनते हैं। आखिर काम की बात जो है।
बिल्कुल। नरेन, अक्सर देखा जाता है कि हमारे कुछ प्रवासी भाई नौकरी की तलाश में शहर आ जाते हैं बिना इस इंतजाम के कि उन्हें रहना कहां पर है। यहां आने के बाद नौकरी के साथ साथ रहने के लिए जगह ढूंढना उनके लिए एक और बड़ी समस्या बन जाती है। इस समस्या का हल ढूंढते ढूंढते तो वो कई बार दलालों के हाथों ठगे भी जाते हैं।
तो अंजलि, आज हम अपने श्रोताओं को बताते हैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां हमारे प्रवासी भाई आसानी से रहने के लिए जगह तलाश सकते हैं, वो भी उचित किराए में।
दोस्तों, वैसे तो आपको दिल्ली में प्रवासी भाई हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से जो मुख्य जगहें हैं वो हैं लक्ष्मी नगर, बदरपुर, मीठापुर, चाणक्यपुरी, मुनिरका, संगम विहार, जैतपुर और मंडावली।
इसी तरह मुंबई में भी कुछ ऐसे ही स्थान हैं, जैसे मुलुंड, घाटकोपर, इंदिरा नगर, पवई, मलाड, नाला सुपारा, भांडुप, लोकमान्य नगर, विक्रोली, ठाणे और सावरकर नगर।
इन जगहों पर किराया निर्भर करता है लोकेशन पर। वो जगह जो शहर के बीचों बीच स्थित हैं, जहां से बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन नजदीक है, वहां किराया ज्यादा होगा। लेकिन वो जगहें जो शहर में किसी उपनगर के अंदर जाकर स्थित हैं, वहां किराया कम हो सकता है। साथ ही वहां पर मौजूद सुविधाएं भी किराए पर असर डालती हैं।
अब देखो ना अंजलि, जहां दिल्ली में आयनगर में वन रूम सेट 1500 रुपए में मिल सकता है, वहीं लाजपत नगर में वन रूम सेट 3000 रुपए में मिलता है।
और इस मामले में मुंबई तो नरेन और भी महंगा शहर है। यहां कमरे भी छोटे होते हैं और किराया भी ज्यादा होता है, इसलिए वहां अधिकतर प्रवासी भाई उपनगरों में ही रहते हैं। वहां कल्याण में रहने के लिए आपको एक कमरे के लिए 1500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं और वर्ली में 2000 रुपए तक। मुंबई में एक और खास बात है नरेन कि यहां पर किराए से पहले सिक्योरिटी के रूप में भी एक मोटी रकम जमा करवानी पड़ती है। वैसे ये चलन दिल्ली में भी कई स्थानों पर देखने को मिलता है।
लेकिन हम आपको बता दें कि दोनों ही शहरों में बहुत सारी अनधिकृत और गैर कानूनी कॉलोनियां भी हैं, जिन्हें कभी भी सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। इन जगहों पर अमूमन किराया बहुत कम होता है, मगर आपको थोड़े ही समय के नोटिस पर मकान खाली करने के लिए कहा जा सकता है, और कभी कभी तो मकान मालिक जमा की गई सिक्योरिटी की रकम को वापस करने में भी दिक्कत करते हैं।
इसलिए हमारी आपको सलाह है कि आप जो जगह किराए पर लेने वाले हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें।
दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें 9197176782 पर SMS कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपकी जरूरत की सारी जानकारी उपलब्ध करवाएं।
तुम्हारी यादों का सहारा मैं जुड़ो मेरी सुहारी, तुम्हारी यादों का सहारा मैं जुड़ो मेरी सुहारी, तस्वीर देखी तुम्हारी कियानी भरे दुलाठियारी, तस्वीर देखी तुम्हारी कियानी भरे दुलाठियारी, दीराजनी दरे दूरे तुम्हारी यादों का, हाँ तुम्हारी यादों का सहारा मैं जुड़ो मेरी सुहारे, तुम्हारी यादों का सहारा मैं जुड़ो मेरी सुहारे। दागड़ियों आज चिट्ठी हुई किएगे, घर कब आना है नूरे बार लेगी, हाँ सुन रे दागड़ियों आज चिट्ठी हुई किएगे, घर कब आना है नूरे बार लेगी, बुए बाबू की राजी खुशी चिट्ठी माल क्यों सभी धाड़ी, बुए बाबू की राजी खुशी चिट्ठी माल क्यों सभी धाड़ी, सारे ले हुई कुकुदेणु रे तुम्हारी यादों का, हाँ तुम्हारी यादों का सहारा मैं जुड़ो मेरी सुहारे, तुम्हारी यादों का सहारा मैं जुड़ो मेरी सुहारे।
अच्छा अंजलि, हमारे सेगमेंट आपकी चिट्ठी के आज के विजेता कौन हैं?
नरेन, हमारे इस सेगमेंट आपकी चिट्ठी के आज के विजेता हैं मीठापुर दिल्ली के अनूप सिंह रावत जी। ये लिखते हैं, सबसे पहले तो जब चलें शहर की ओर के सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्ते। अनूप सिंह रावत जी, आपको भी हमारा नमस्ते। आगे ये लिखते हैं, जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो मैं अपने दोस्त के साथ रहता था। काफी कोशिशों के बाद मुझे नौकरी मिली, लेकिन वहाँ मुझे सिर्फ 1800 रुपए मासिक आय मिलती थी। मजबूरन मुझे एक सस्ता सा कमरा तलाश करना पड़ा, जहाँ हर चीज की बहुत परेशानी थी। खाना पीना, किराया, सब कुछ मिलाकर 1300 रुपए महीने का खर्चा हो जाता था। 500 रुपए मैंने अकेले रहकर पहले महीने में बचाए, लेकिन दूसरे महीने जब मैं अपनी पेमेंट लेकर घर आ रहा था तो रास्ते में किसी ने बस में मेरी जेब काट दी। मैं घर आकर बहुत परेशान हुआ। तब मैंने अपने दोस्त से 1500 रुपए उधार लिए, उनसे मैंने मकान मालिक का किराया दिया और बाकी बचे रुपयों से घर का खर्च चलाया। फिर भी चिंता कम नहीं हुई क्योंकि दोस्त से लिया हुआ कर्जा भी तो वापस करना था। फिर मैंने 7वीं से 10वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह मैंने अपने दोस्त के 1500 रुपए लौटाए। कुछ दिनों बाद मेरी अच्छी नौकरी लग गई और मुझे मंथली पेमेंट 8000 रुपए मिलने लगी। इस तरह मैंने अपने बुरे दिन काटे। आज मैं मीठापुर में रहता हूँ और कमरे का किराया और बाकी का खर्चा मिलाकर भी काफी बचा लेता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और गाँव में भी अपने माता पिता को खर्चा भेजता हूँ। बहुत जल्द मैं अपना खुद का घर खरीदने वाला हूँ। अनूप सिंह रावत जी, आप इसी तरह तरक्की करते रहें, हमारी यही कामना है।
और अनूप सिंह जी, आपकी इस चिट्ठी के लिए जब चलें शहर की ओर से आपको दिया जाता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आप भी जीत सकते हैं ऐसा ही खूबसूरत इनाम। लेकिन इसके लिए अपने प्रवास से जुड़े अनुभवों वाली चिट्ठियां हमें भेजते रहिए। चिट्ठियों के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com।
और अब समय है संदेशों को सुनने का।
मैं अपनी बीवी को संदेश देना चाहता हूँ। अभी मेरी एंगेजमेंट हो रखी है, अगले महीने मेरी शादी है, तो मैं अपनी घरवाली को संदेश भेज रहा हूँ जो कि वहाँ पे मसमकोली में रहते हैं, ग्राम मसमकोली। मैं ग्राम गुरफली का रहने वाला हूँ और मेरी बीवी मसमकोली की रहने वाली है, जिला पौड़ी गढ़वाल है। मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, मेरी चिंता मत करना। बहुत दिनों से फ़ोन नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो रखा था, तो अब मैं फ़ोन करूँगा। मैंने फ़ोन सही करवा लिया, मैं बात करूँगा और इधर सब ठीक ठाक हैं, बाकी चिंता मत करना।
मैं अपने दोस्त प्रदीप को संदेश देना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में ठीक ठाक हूँ और अगर दिल्ली आ रहा है तो पहले सोच के आना घर से कि मुझे वहीं रहना है या गाँव दोबारा वापस जाना है, क्योंकि वो हर तीसरे महीने में गाँव चले जाता है। नौकरी करना तो ठीक से करनी है और नौकरी के लिए तेले पूरी व्यवस्था हो रखी है।
मेरा नाम अनीता नेगी है, मैं मीठापुर में रहती हूँ। मुझे ये संदेश पौड़ी गढ़वाल में ग्राम रानी हाट में अपनी दोनों बहनों कमला और बिमला के लिए देना है। भाई आया था घर पे राखी बांधने के लिए, तुम्हारे हिस्से की राखी भी मैंने यहाँ पे बांध दी है। मुझे पता है तुम लोगों ने उसके लिए राखी रखी होंगी। सुना है मैं मौसी बन गई हूँ, बहुत खुशी की बात है। अब अगले महीने मैं भी गाँव आ रही हूँ कुछ दिनों घूमने के लिए।
दोस्तों, ये थे वो संदेश जो हमारे प्रवासी भाइयों ने अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के लिए भेजे थे।
और अगर आप भी अपना कोई संदेश अपने परिवार तक या शहर में काम कर रहे अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपना संदेश अपने नाम और पते के साथ हमारे नंबर पर तुरंत SMS कर दीजिए। हमारा नंबर है 9197176782।
दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, और अब समय आ गया है आपसे इजाजत लेने का। लेकिन जाने से पहले हम अपने सहयोगियों हेवल वाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज भणच का धन्यवाद करना चाहते हैं। और जाते जाते एक और जरूरी बात,
हमारे प्रवासी दोस्त मिलजुल कर अपना एक क्लब तैयार करें और उस क्लब से जुड़ी गतिविधियों के बारे में हमें बताएं, और जिस क्लब की गतिविधियां सबसे ज्यादा उत्साहजनक होंगी उसे हमारे सेगमेंट कुछ विश्वास में शामिल किया जाएगा।
तो भेजिए हमें अपनी चिट्ठी, SMS और ईमेल। चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है,
कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
SMS करने के लिए हमारा नंबर है 9197176782। और ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।